الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي لا أجمع ولا عبدي خاف بيني وآمنين إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھی اس آیت کو اللہ پاک نے اتنے اچھے انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ جو آدمی دنیا میں مجھ سے ڈرے گا جو آدمی دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. اس آیت کا ترجمہ ہے. اور دوسری جگہ سورت رحمان میں کہا ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتان. اسی آیت کی گویا کہ تشریح ہے کہ جو مجھ سے دنیا میں ڈرے گا اس کی ایک جنت نہیں دو جنت ہے. دو جنت جنتان. اور جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وعزتی وجلالی اللہ نے کہا یہ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. وعزتی وجلالی میری عزت کی قسم میری جلال کی قسم لا اجمع علی عبدی خافتین و آمنین میں اپنے بندے پر کبھی دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. حدیث کو سمجھیے دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. دو خوف کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہو پھر آخرت میں بھی ڈرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں چین کی زندگی گزارے اللہ کو بھول کر اور آخرت میں بھی چین ملے ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے اپنی قسم کھا کر بیان کیا ہے. بات سمجھیے وعزتی وجلالی میری عزت کی قسم میری جلال کی قسم دنیا میں مجھ سے ڈرا ہے گناہوں سے بچا ہے اس کو قیامت میں کوئی خوف نہیں ہے کوئی خوف نہیں. اور جو دنیا میں امن میں رہا यानी अमन का मतलब दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से और दीन को भूल कर, तो फिर ऐसा शख्स यो समझे कि मुझे कयामत में अमन मिले, हो ही नहीं सकता। इसलिए दुनिया में दो चीज है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, हर इंसान के लिए दो चीज का सामना करना पड़ता है। मैं उर्दू बोल रहा हूं, पुश्तू नहीं, शायद समझ में आ जाएगी मेरी बात, जो नहीं समझे मुझे पूछ ले, जो नहीं समझे वो समझने वाले समझे हुए को पूछ ले। या कह रहा हूं मैं, दीनी एतबार से भी दो चीज है और दुनियावी एतबार से भी, और वो है खौफ और उम्मीद। खौफ फियर एंड होप्स, फियर अल्लाह का खौफ और उम्मीद, दो चीज। चलो एक मिसाल से समझिए, बहुत आसान अंदाज में। बहुत सारे हम लोग काम करते हैं, कोई जॉब करता है, किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी की ऑफिस है, कोई बिजनेस करता है, तिजारत करता है, तो इंसान को उसमें खौफ रहता है कि अगर मेरी बिजनेस लॉस हो गई, मेरा जॉब अगर छूट गया, तो उसको खौफ इस बात का है कि मैं रेंट कैसे भरूंगा, मकान का किराया, मकान कैसे खरीदूंगा, गाड़ी, बच्चों की फीस कैसे, एक खौफ है इंसान को कि मेरे अगर दुकान ही नहीं चली, मेरा बिजनेस ही नहीं चला, कोई कस्टमर ही नहीं आया, तो मुझे खौफ इस बात से है कि फिर मैं कैसे अपने खाना पीना, बच्चों को, बीवी को, सबका खर्चा, घर का कैसे करूंगा। और दूसरी तरफ होप भी, उम्मीद भी है कि अगर ये मेरा काम चलता रहे, दुकान चलती रहे, बिजनेस चलती रहे, फुना फुना जितनी भी चीज दुनिया की है, तो उम्मीद भी है अगर चलता रहे तो फिर मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, फुना करूंगा, फुना करूंगा, ये उम्मीद भी इंसान को है। इसी वजह से दुनिया के अंदर में इंसान को इतना खौफ रहता है जॉब छूटने का कि चाहे स्नो हो लेकिन जॉब पर जाता है, चाहे बीमार हो जॉब पर जाता है, सिक नोट लेता है लेकिन फिर भी क्या है, जाता रहता है, आज नहीं कल नहीं परसों, चाहे कितना थका हुआ हो, बहुत थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, रात में छोटी सी रात है समर में, लेकिन सुबह उठ के जॉब पर जाना ही जाना है, 7 बजे उसको उठना ही उठना है, नहीं जाएगा तो मसला हो जाएगा। इसमें खौफ भी है, उम्मीद भी है, ये दुनियावी एतबार से है। चलो एक और मिसाल ले लेते हैं, डॉक्टर की, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे और अल्लाह न करे किसी को कैंसर हो मिसाल के तौर पर, या और कोई बीमारी का, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो इंसान को खौफ भी है और उम्मीद भी है। इसमें खौफ इस बात का है कि अगर काटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बीमारी, बढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा, तो उसको खौफ इस बहुत इतना जरा खौफ है कि वो डॉक्टर को पैसे भी देते, यहाँ चलो यहाँ तो एनएचएस में नहीं देते फ्री में, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान में चले जाओ ना, 40-40, 20-20 लाख रुपए होते हैं एक दो दो हफ्ते के। हाँ वही, और एक अजीब अंदाज है, हमारे एक दोस्त थे वो हॉस्पिटल में 7 दिन रहे आईसीयू में, वो इतना गरीब बंदा था, वो जब निकल कर आया आईसीयू में तो 8 लाख रुपये उसका कर्ज हो गया, अब उसके पास एक पैसा नहीं, एक खेत था उसको बेच के उसको पैसे भरने पड़े, पैसे भरने पड़े। अल्लाह हमें भी उसकी भी कदर करने की तौफीक दे, आमीन आमीन। जहां भरने हैं भरकर आए उनको पूछो, भरने हैं और भरकर आए हैं, हमारे माँ बाप को जाकर पूछो एक एक डिलीवरी के कितने चार्ज करते हैं, हम जब पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने कितना दिया, वहां जाकर पूछ के आओ उस जमाने में। अब तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो ये खौफ भी इस बात का है कि उसको क्या करते हैं, माशाल्लाह उसको कटवाने के लिए आगे चलकर उसको पैसे भी देते हैं, क्योंकि खौफ है ना उसको कि बढ़ जाएगा, मर जाऊंगा मैं, और ऊपर से जब अच्छा हो जाता है तो शुक्रिया भी कह देता है, शुक्रिया भी कह देता है, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया, ऑपरेशन मेरा सक्सेस रहा, क्या कहता है, सक्सेस रहा। खौफ भी है और उम्मीद भी इस बात की है, इसमें उम्मीद भी अजीब है उसके दिल में, अजीब उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा जी, तो जरा और ज्यादा अच्छी तरह जिंदगी गुजारूंगा, दोनों चीजें हैं मेरे भाइयों, दोनों चीजें इसमें हैं। कुरान करीम के अंदर में अलिफ लाम मीम से लेकर सूरह नास तक पढ़ो, अल्लाह ने ये दोनों चीज बताई है कि जिस तरह दुनियावी एतबार से तुम्हें खौफ और उम्मीद है, काश के तुम्हारे अंदर दीन के एतबार से भी खौफ और उम्मीद पैदा हो जाए, दीन के एतबार से भी। यही बात है ना कि खौफ इस बात का है, खौफ इस बात का है कि मरने के बाद में जो जन्नत ना मिले, और उम्मीद इस बात की है कि कुछ मैं करता रहूं दीन का काम कि अल्लाह पाक मुझे जन्नत ता फरमा दे। दोनों चीज है, इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ततजाबा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदउन रब्बहुम खौफन व तमा। दो चीज है, खौफ और उम्मीद। ततजाबा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, जुनूब का मतलब ये है, ये उनकी बाक जो है बिस्तरों से अलग रहती थी, रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने खड़े होते थे। तो मेरी बात समझते हैं, ततजाबा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, मदाजी मदजा बेड, बिस्तर, नरम नरम बिस्तर से उठ करके वो अल्लाह के सामने वुजू करके नमाजें पढ़ते थे, रोते थे। क्यों? अल्लाह आगे कह रहे खौफ व तमा, खौफ और उम्मीद भी करते हैं, खौफ भी है, खौफ भी है और उम्मीद भी है, दोनों चीज है। और जो न करे, बिल्कुल ही नमाज न पढ़े, बिल्कुल ही अल्लाह को याद न करे और भूल जाए और गुना ही गुना, वनहन नफ्स अनिल हवा का माना कि आदमी गुनाहों से अपने आप को बचाए, गुना ही करता रहा तो उसकी क्या हालत होगी? उसको तो कोई ख्वाब नहीं, लेकिन तमन्ना तो बड़ी बड़ी है उसकी कि जन्नतुल फिरदौस मिल जाएगी। अल्लाह उसको भी, अल्लाह के नबी उसको भी कहते हैं कि अकलमंद कौन है, अकलमंद कौन है? हम कहेंगे भाई लॉयर साहब अकलमंद है, माशाल्लाह प्रोफेसर साहब अकलमंद है, फुला अकलमंद है, फुला अकलमंद है। मेरे नबी की जबान से सुन लो, अल कईस, कईस के माना इंटेलिजेंट, मंदान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, जो अपने आप को भूले और आखिरत की फिक्र करे, यानी अपने आप को हर वक्त अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में लगाए। और वल आजिज, हमारी इंग्लिश की जबान में कहते हैं फुलिश, पुलिस नहीं, फुलिश, समझ में आती है बात, बेवकूफ कह दो, बेवकूफ वो है जो मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो उसका नफ्स कहे ये कर वो करता है, ये कर वो करता है, ये कर, यानी अपने डिजायर का फॉलो करता है। वो तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से बड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नबी सुना रहे हैं, माय नबी इज टेलिंग अस, अवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टेलिंग अस, एक्सप्लेनिंग अस। अल्लाहु अकबर, कितना अच्छे अंदाज में समझाया कि इन अल्लाह वालों को देखो, सहाबा ताबीन, औलिया तबे ताबीन, नेक और सालिहीन को, कि वो रात में रोते थे कि कहीं अल्लाह हमसे राजी हो जाए। बस ये तो मुख्तसर जिंदगी खत्म होनी होनी है, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी वो असल है। हमारे मौलाना पालनपुरी साहब, मौलाना साहब पालनपुरी साहब के वाले साहब मौलाना उमर साहब फरमाते थे, सारी दुनिया, पूरी दुनिया राई के दाने से भर दो, भर दो, भर दो, भर दो, एक जर्रा बराबर सुई के सुराख के बराबर, होल के बराबर जगह नहीं, सारी दुनिया में जमीन से लेकर आसमान तक मस्तक सीट से भर दो, और हर साल में, साल में एक बार परिंदा आए, एक दाना ले जाए, फिर एक साल के बाद आए, फिर एक साल के बाद, फिर भी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत उसके मुकाबले में खत्म नहीं होगी। आखिरत तो बहुत लंबी है ही नहीं जिसकी एंड, जिसकी एंड नहीं है वो आखिरत को, हमें आखिरत को कमाना है ना, जन्नत को कमाना है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहे इस आयत के अंदर में। और हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, फरमाया कि एक आदमी वो मस्जिद का इमाम था, पहले जमाने में होगा, मस्जिद का इमाम था, और उस वक्त हिंदुस्तान में तूफान हुआ, मारते थे मुसलमानों को, कत्ल करते थे। एक जवान लड़की 18, 19, 20 साल की भागी हिंदुओं से भागकर, और हमने तो अपनी आंखों से देखा है वो कैसे कत्ल करते हैं, घर में घुस करके मां के पेट में बच्चा, पहले बच्चे पेट में मारते थे फिर मां को कत्ल करते थे। हमारे यहां रांदेर में मुफ्ती साहब, मुफ्ती लाजपुरी साहब के पास एक आदमी आया था और आकर उसने कहा, ऐसा कांप रहा था, उसने कहा एक नौजवान बच गया बेटा, बाप को शहीद किया, भाइयों को शहीद किया, मां को शहीद किया, बहनों को रेप किया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने सूरत में उसने बताया। अल्लाह अकबर। कहा मैं जब वो लोग आ गए ना तलवार लेकर के घर में, तो मेरा बाप तो बूढ़ा था, तो मैं एक कोने में छुप गया, कांप रहा था, मैं देख रहा हूं कि वो मेरी माँ के साथ 25-25 आदमी मेरी बहनों के साथ ये जिना रेप कर रहे हैं, और मेरे बाप को पहले कत्ल किया, मेरे भाइयों को, वो कांप रहा था हजरत के सामने बयान करते हुए, जाकर उसको पूछो कैसे उसकी आंख के सामने ऐसा है। तो नौजवान था, बहुत बड़ा भी नहीं, मेरे सब 17-16 साल का होगा, लेकिन रो रहा था। इस तरीके से एक एक हमने देखा, 180 बॉडी हमारे सामने, हमारे कजन सुना रहे थे, वो सूरत में इमाम थे, सामने 180 मुसलमान की बॉडी है, एक मर्तबा नमाज पढ़ाई उन्होंने एक रात में, और बहुत सी बॉडी तो ऐसी है कि जो उसमें डाल देती थी गटर में, पता भी नहीं चला कहां चली गई बेचारे, बहुत सारे लोगों को। तो ये लड़की जवान मस्जिद में घुस आई जल्दी जल्दी, हमारे यहां तो मस्जिदें खुली रहती है ना, घुस आई और अंदर, तो एक इमाम साहब मस्जिद में ही रहते थे, कोई नहीं था, रात का अंधेरा था, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर दिया, तो आ गई अंदर, देखा भाई तूफान और दरवाजा बंद कर दिया। अब ये इमाम जो है ये भी जवान है, उसके दिल में वो रात पूरी रात जागता रहा, सोया नहीं, और वो लड़की थोड़ी थोड़ी देर में दूर से उसको देखती रही। वो क्या करते थे इमाम, कैंडल को जलाया हुआ था, उस कैंडल के अंदर में अपनी उंगली हर 10-15-20 मिनट में वो गर्म करता था अपनी उंगली को, ऐसे पूरी रात अपनी उंगली को जलाता रहा, ऐसे फिर हटाता था, फिर इस तरीके से। तो सुबह हो गई, फजर का टाइम हो गया, उससे पहले सुबह सारी उसको इमाम ने कहा अब तुम चली जाओ, अब तो सुबह हो गई है, कोई नहीं होगा, सब भाग गए होंगे। कहा मैं चली जाती हूं, लेकिन एक बात तुम्हें पूछना चाहती हूं कि तुम पूरी रात अपनी उंगली को क्यों चलाते थे। कहा वो ऐसे ही था। नहीं नहीं बताओ, मैं चली जाती हूं। उसने कहा हर 10 मिनट में मेरे दिल में ये खौफ, ये डिजायर आता था कि मैं भी अकेला, लड़की भी अकेली, कोई नहीं, हम जीना कर ले। मैं अपने दिल को, अपने डिजायर को खत्म करने के लिए हर 10 मिनट में अपनी उंगली को, कि दुनिया की आग तुझे इतनी जला रही है तो जहन्नम की आग में तेरा क्या होगा अगर तू ये काम करेगा। ये वम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही वह न नफ्सा, अकेले हो सब कुछ कर सकता है ना, सब कुछ, कोई देखने वाला नहीं है, न माँ देखती, न बाप, न बहन, न बच्चे, कोई नहीं। ऐसे वक्त में अल्लाह के सामने, अल्लाह उसके सामने है, अल्लाह उसके सामने है। हमारे शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद वाकिया लिखा, अजीब फरमाया, उनके जमाने में उनके पास एक तालिबे इल्म बहुत खूबसूरत, बहुत सीधा सिंपल, और रोजाना दर्स में आता था, सबक सुनने के लिए आता था, जब भी आता था आकर सुनकर वापस चला जाता था, खूबसूरत खूबसीरत था। एक मर्तबा जब अपने घर से आ रहा था दूर से, रास्ते में एक औरत ने कहा तुम्हारा काम है, मसला पूछना है, मेरे घर में आओ। ये जब घर में गए, घर के अंदर में ये तालिबे इल्म घर में गया, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उस औरत ने कहा मुझसे जीना करो वरना मैं तुम्हें मेरे घर में, तुम आए हो, बदनाम कर दूंगा। अब क्या करे ये नौजवान, क्या करे, अंदर में बंद किया हुआ है, उसने सोचते सोचते क्या करें, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। उसने कहा मुझे 5-7-10 मिनट दे दो, फिर हम जीना करेंगे। ये बाथरूम में गया, टॉयलेट में गया, जाकर के उसने अपनी, वो तो कच्ची टॉयलेट हो उस जमाने, अब तो कहां पक्की टॉयलेट है, उसने नापाकी गंदगी ली और अपने सर पर, अपने कपड़ों पर, अपने चेहरे पर, अपने हाथ पर वो सारी गंदगी लगा दी और एकदम बदबूदार हो गया, बदबूदार हो गया। जैसे ही बाहर निकला टॉयलेट से, तो उस लड़की ने कहा, उस औरत ने कहा सॉरी तू तो बहुत गंदा आदमी है, निकल घर से। बस घर से निकल गया, निकल करके वो बंदा निकल करके नहर पर गया, जाकर के गुसल किया, रोती हुई है कि अल्लाह पाक तूने मुझे गुनाह से बचा लिया, अगरचे मैंने अपने बदन को गंदा कर दिया है। एक बात याद रखो, बदन गंदा होगा धोना आसान है, दिल गंदा होगा धोना मुश्किल है। दिल जब गंदा होता है गुनाहों से तो उसका धोना मुश्किल है, सिवाय तौबा के उसका कोई रास्ता ही नहीं है। अल्लाह के सामने रोने से गुसल किया और गुसल करके वापस मदरसे में आया, उस्ताद के सामने शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं इतनी खुशबू फैल गई क्लास के अंदर में जिसका कोई अंदाजा नहीं। हजरत ने दर्स को बंद किया और पूछा किसने खुशबू लगाई है, किसने खुशबू लगाई है? ये चुप है। दो बार पूछा, ये सब चुप है। तीसरी बार सारे चुप है। चौथी बार कहा तुम्हें कसम देता हूं बताओ किसने लगाई है। उस बच्चा खड़ा हो गया, रोने लगा, कहा मेरे साथ ये वाकिया पेश आया है कि मैंने अपने बदन पर गंदगी लगाई और इस तरीके से मैं गुनाह से बच गया और मैं धो करके वापस आया हूं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। फरमाया तेरी खुशबू ऐसी है कि ऐसी खुशबू कभी दुनिया में सूंघी नहीं है। और उसके बदन से हर वक्त खुशबू आती थी, यहां तक कि उसकी मौत हो गई। ये दुनिया की हालत है। वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान है, जन्नत की खुशबू उसको दुनिया में लगी। सुभान अल्लाह, जो आदमी अपने आप को गुनाह से बचाएगा। इसलिए याद रखो कि दीनी एतबार से भी खौफ और उम्मीद। अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाता हूँ। अल्लामा बुसैरी कौन थे? जिनको लकवा और स्ट्रोक हो गया था, इन्होंने अशआर लिखे थे कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ये अशआर भी, वो अशआर है उसका अरबी, उसका तर्जमा इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, किसी को कसीदा कहते हैं। अल्लामा बुसैरी का कसीदा मशहूर है, उन्होंने लिख रखा था, लेकिन वो चूंकि स्ट्रोक हो गया था, ही कुडंट गो टू मदीना मुनव्वरा टू रीड द पोएट्रीज इन फ्रंट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अपने घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और फरमाया अल्लाह के हबीब मैंने ये अशआर लिखे हैं और आपके दर पर आकर पढ़ना चाहता हूं, और लेकिन मैं बीमार चल नहीं सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। सुबह उठे तो बिल्कुल नॉर्मल थे। उन्होंने दो बार अल्लाह के नबी के सामने उस ख्वाब में वो अशआर पढ़े, पर मैं कहां है बताओ, पढ़ना शुरू किया, सुबह उठे तो ठीक हो गए। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं वो कसीदा अल्लामा बुसैरी का बहुत बहुत ही मुजर्रब है। जो आदमी बीमारियों में इसको पढ़े ना तो अल्लाह उसको मुकम्मल शिफा अता फरमाते हैं, इतनी बरकत है। जाकर उन्होंने वहां पढ़ा, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर। उन अशआर में अल्लामा बुसैरी ने एक शेर लिखा है कि हमारा नफ्स जो है, हमारा डिजायर जो है, वो छोटे बच्चे की तरह है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पिलाते पिलाते 2 साल लग जाते हैं, अब इसको दूध पीने की आदत हो गई तो माँ छुड़ाना चाहती है, 2 साल हो गए अब उस बच्चे का दूध छुड़ाना चाहती है कि छोड़ दे, लेकिन अगर यूं कहने इसको तकलीफ होगी बच्चा रोएगा, बच्चा शरारत करेगा और जिद्दी हो जाएगा, फिर भी माँ उसको कुछ करवाहट लगा देती है, अपनी छाती पर कोई करवाहट लगा देती है या कोई और तरीका इख्तियार करती है जिसकी वजह से बच्चा फिर दूध छोड़ देता है। फरमाया तुम्हारा नफ्स भी ऐसा ही है, इस बच्चे की तरह हर वक्त वो चाहता है कि तुम्हें गुनाह करवाता रहे। तुम उनको थोड़ी करवाहट चखाओ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो करवाहट, वो बीतरपन क्या है, वो बीतर चीज क्या है? फरमाया अपने नफ्स को कहो अगर फुना गुना करोगे या मुझे गुनाहों में लगाओगे, मैं 10 पाउंड सदका करूंगा, मैं 10 रकात पढ़ूंगा या 1 सिपारा पढ़ूंगा। ये गोया करवाहट है, ये इंजेक्शन है शैतान के लिए और नफ्स के लिए। आप कुछ दिन करके देखो, फिर नफ्स और शैतान तुम्हें कभी गुनाह की तरफ मुबतला नहीं करेगा। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान किया है। खौफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात मुझे याद आ गई। इमाम गजाली की बात भी अजीब अजीब होती है। फरमाया जवानी में खौफ होना चाहिए। When a person is very very young, he have to have the fear of Allah। और जब बुढ़ा हो जाए ओवर 65-70 होने लगे, अब अल्लाह से उम्मीद रखे, अल्लाह अब तो बूढ़ा हो गया हूं, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, दाढ़ी सफेद हो गई, मेरा बदन कमजोर हो गया, अल्लाह मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ कर देगा, मुझे उम्मीद है कि तू मुझे माफ करेगा। यकीनन खुदाए पाक की कसम, अगर ये दोनों चीजें हमारे अंदर में आएगी, खौफ व तमा, खौफ करते हुए फुलफिल द कमांड्स ऑफ अल्लाह विद फियर ऑफ अल्लाह तबारक व तआला, इसी को कह रहे हैं अल्लाह तबारक إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. جو آدمی اللہ کے طریقے کو پس پورا کرے گا، اللہ کو ایک those who believe in Allah then they fulfill the commands of Allah تبارک و تعالی، there be no fear for him in this dunya, no sadness for him in this dunya, no fear in the grave, no on the day of قیامت. As I mentioned to you the hadith وعزتی وجل لالی لا اجمع على عبدي خافتين وامنين، کہ میں میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، اگر بندہ قیامت کے دن میں یا دنیا میں یا قیامت کے دن میں دو خوف کو جمع نہیں کر سکتا، اگر دنیا میں خوف ہے تو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر دنیا میں امن ہے تو آخرت میں خوف ہوگا. اس لیے ہم مرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کون سے طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، which side we are going, which direction we are going. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، he used to sit by the grave and he used to cry a lot. The sahaba used to ask him, you don't cry normally when you hear about jannat and about jahannam, why are you crying so much here? فرمایا یہی تو جگہ ہے، the grave, once we are buried nobody will come and help us, this is the first step to go towards Allah تبارک و تعالی. اگر یہاں میں کامیاب ہو گیا آخر تک کامیاب رہوں گا، if I success here I'll be success till the end, if I do not success here in the grave my punishment started then there'll be punishment till the end. اس لیے ہمیشہ اللہ سے یاد رکھو، اللہ سے خوف رکھو اور اللہ سے امید رکھو. اسی بات کو اللہ قرآن کی اس آیت میں بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت ہے جو دنیا میں، the person who have the fear of Allah and he fulfill the commands of Allah تبارک و تعالی، he live his dunya's aman and he worried about hereafter. Allah said in the Quran Kareem, I will give not one, وَلِمَنْ خَابْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ، I will give him two jannat. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوف نصیب فرمائے، امید نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. آمین. 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 آمین.